मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 21 अक्टूबर 2019 के AFEIS के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले दो एपिसोड से हम लोग जो जनरल स्टडीज का सेकेंड पेपर है उसका विश्लेषण कर रहे हैं, उसे जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। और सच पूछिए तो हम लोगों की यह कोशिश बहुत विस्तार के साथ हो रही है। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं केवल बिंदु गिना करके या सतही तौर पर आपसे बात करके अपने इस दायित्व से अपने आप को मुक्त कर लूं। मेरा उद्देश्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार से बता करके आपके अंदर उन तथ्यों को बिल्कुल बिठा दूं, रचा बसा दूं, जो वास्तव में आपकी एक ज़रूरत है और जिससे कि आप भविष्य की जो प्रिपरेशन है उसे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कर सकें। तो दोस्तों, इस एपिसोड में मैं आपसे अब जो जनरल स्टडीज़ का सेकेंड पेपर था मेन्स का, उसका किस तरीके का नेचर रहा है, उसका पैटर्न क्या रहा है, इसके बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूं। एक प्रश्न जो लगातार आप लोग पूछते रहते हैं और पूछना आप लोगों का जायज भी है कि सर, करंट अफेयर्स के कहां तक की घटनाएं क्वेश्चन पेपर्स में आती हैं, कहां तक की घटनाओं को हम कवर करें। अक्सर स्टूडेंट इस पर प्रश्न करते हैं। इसके बारे में मैं आपको एक उत्तर देना चाहूंगा और वो ये कि हालांकि उसका उत्तर जो है इस सेकेंड पेपर में नहीं है, जनरल स्टडीज के थर्ड पेपर में है। जनरल स्टडीज के थर्ड पेपर में जब वो नेशनल सिक्योरिटी के बारे में एक क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें वे बाकायदे हमारे यहां जो गैर गतिविधियां, जो गैर कानूनी गतिविधियां संशोधन एक्ट आया था उसका उसमें मेंशन हमें मिलता है। और ये जो एक्ट आया था दोस्तों, ये जुलाई में आया था, जुलाई के मिड में। थोड़ा सा उसमें NIA जो संशोधन विधेयक आया है उसका भी उल्लेख है। तो ये दोनों बेसिकली जुलाई के सेकेंड और थर्ड वीक के हैं। और आप देखिए कि जो एग्जाम हो रहे हैं वो हो रहे हैं 21-22 सितंबर को। जुलाई मिड या थर्ड वीक में घटना घटित हो रही है और यूं कह लीजिए कि सितंबर के थर्ड वीक में एग्जाम हो रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि 2 महीने पहले जो घटनाएं घटित होती हैं उनके भी एग्जामिनेशन में पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। मैं चाहूंगा कि आप इस तथ्य को नोट कर लें, क्योंकि कभी कभी ही ऐसा होता है जब इस तरह के क्लू बहुत स्पष्ट तौर पर मिल पाते हैं। हालांकि जब भी स्टूडेंट को गाइड करने की बात आती थी तो मैं सामान्यतया उनसे यही कहता था कि 2-2.5 महीने पहले तक की घटनाएं कवर की जाती हैं। चूंकि अब वो बिल्कुल प्रमाणित हो चुका है तो आप इसे 2 महीने मानकर चल सकते हैं। मित्रों, एक बात और, अब जबकि मैं जनरल स्टडीज के चारों पेपर देख रहा हूं और बहुत गहराई के साथ मैंने इन्हें देखने और समझने की कोशिश की है तो मेरा हृदय एक अलग किस्म के उत्साह, उल्लास और हर्ष से भर उठा है। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? नहीं, मेरा इसलिए नहीं कि पेपर सरल थे या कठिन थे। देखिए, जिनका सिलेक्शन होना है उनकी संख्या निश्चित है और उनका सिलेक्शन होना ही है, चाहे पेपर कितना भी कठिन आ जाए, पेपर कितना भी सरल आ जाए। मेरी जो खुशी का कारण है वो ये है कि हम लोगों ने जो ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है सिविल सर्विस के प्रिपरेशन को लेकर, मैं देख रहा हूं कि क्योंकि लेक्चर्स मेरे ही हैं तो मैंने जिस तरीके से उन लेक्चर्स पर बात की है, एक एक टॉपिक पर जिस तरीके से मैंने चर्चा की है, चारों तरफ से मल्टी डायमेंशनल तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ मैंने उस टॉपिक को समझाने की कोशिश की है, उसी कोशिश के तहत मैं देख रहा हूं कि जब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो कवर हो गए हैं। यानी कि अगर वो लेक्चर आप सुन लेते हैं, ध्यान से सुन लेते हैं, तो जो थोड़े से घुमावदार क्वेश्चंस हैं जिसमें आपसे आपकी ओरिजिनलिटी मांगी जाती है, आपके विचार पूछे जाते हैं या वर्तमान का विश्लेषण करने के लिए कहा जाता है, वह क्षमता आप में पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि उसमें जितनी भी मेहनत मैंने की है वो मेहनत बहुत काम की है और उससे भी बड़ी बात यह कि आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी है। तो आइए अब मैं जो इसके क्वेश्चंस हैं उनके पैटर्न पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। देखिए, अगर सामान्यतया हम जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर के सभी क्वेश्चन को लेकर के चले तो इन्हें 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी संख्या ज्यादा है, जो थोड़े से घुमावदार हैं, थोड़े से जटिल हैं और इनमें सच पूछे तो आपके विश्लेषण क्षमता को जांचने और परखने की कोशिश की गई है। अब ये जो जांचने और परखने की कोशिश जो यूपीएससी की है, सवाल यह है कि आप उस कोशिश पर खरे उतरेंगे कैसे। दोस्तों, इस पर उतरने के लिए आपको दो काम करना होगा और इस पर बहुत गहराई से आपको मेहनत करनी होगी, और सबसे पहली बात तो यह कि आपको विश्वास करना होगा। पहला यह है कि जो भी आपके टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को आप समझने की कोशिश कीजिए, आप उन पर अच्छी पकड़ बना लीजिए। वास्तव में वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो क्यों इस तरीके के प्रोविजंस वाले टॉपिक हैं, क्यों उनमें इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, वो सारे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाने चाहिए। और इसके बाद फिर आप उन्हें करेंट से जोड़ कर देखिए। अगर आप करेंट से जोड़कर नहीं देख पाएंगे तो मानकर चलिए कि जो इस तरह के प्रश्न हैं, इस तरह के प्रश्न के सही आंसर आप नहीं दे सकेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप करेंगे क्या, आप करेंगे ये कि किताबों में जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसके पॉइंट्स आप लिखकर चले आएंगे और एग्जामिनर बिल्कुल तुरंत बड़ी आसानी के साथ समझ जाएगा कि नहीं, ना तो आपने प्रश्न को ठीक तरीके से समझा है, और अगर प्रश्न को समझ भी लिया है तो आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, वही जो रटा रटाया पढ़ा पढ़ाया है वही आपने लिख दिया है। तो स्वाभाविक है कि अगर एक 10 नंबर का प्रश्न है तो इसमें आपको 2-3 नंबर से वो ज्यादा नहीं देंगे। आपको लग तो ये रहा है कि नहीं, मैंने तो लिखा है और किताब से ही लिखा है, लेकिन उस पैटर्न पर आप फिट नहीं बैठ रहे हैं जिसकी वो अपेक्षा कर रहे हैं। जैसे इस तरह के कुछ क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन तो मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं जो हमारे सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर था, तो उसको मैं लेकर के नहीं चल रहा हूं। उसके एक और क्वेश्चन आप देखिए तो शायद मैं जो बात कह रहा हूं उसका प्रमाण आपको मिल जाए, या कह लीजिए कि उसे और अधिक आप ठीक से समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 2 ही है, ठीक उसके बाद, जिसकी चर्चा मैं पहले सेपरेशन ऑफ पावर की कर चुका हूं। देखिए इसमें ये कह क्या रहे हैं, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसकी स्थापना केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा या उनके विरुद्ध शिकायतों एवं परिवादों के निवारण हेतु की गई थी। अब इसमें उन्होंने कुछ नहीं कहा है, उन्होंने सीधे सीधे एक शब्द में कह सकते थे कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, बस। लेकिन वो कह रहे हैं, अब उसी बात को थोड़ा सा फैला के कह रहे हैं, मतलब आप कह लीजिए कि सीधे रास्ते से ना जा करके वो थोड़ा सा घूम घूम करके पहुंच रहे हैं। कहा कुछ भी नहीं है, वही है कि केंद्रीय जो अधिकरण है, प्रशासनिक अधिकरण, जिसे आप कैट कहते हैं, आजकल एक स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। व्याख्या कीजिए, मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं, द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल विच वॉज एस्टेब्लिश्ड फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेज एंड कंप्लेंट्स बाई आर अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नाउडेज इज एक्सरसाइजिंग इट्स पावर एज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी एक्सप्लेन। देखिए जो एक्सप्लेन शब्द है, इसका मतलब यहां क्या हुआ कि उन्होंने एक स्थापना कर दी है, उन्होंने एस्टेब्लिश्ड एक स्टेटमेंट दिया है। इसमें वो आपके विचार नहीं पूछ रहे कि आप इसे सहमत हैं या सहमत नहीं है, नॉट एट ऑल। वो सीधी सी बात कह रहे हैं कि ये है, इसमें अब आप अपना दिमाग मत लगाइए, इसको एक्सप्लेन कीजिए, ये क्यों है, ये कैसे है, आपको ये बात बतानी है। नो डाउट कि अगर आपको लगता है कि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो वहां आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, लेकिन आप शुरुआत ही नहीं करेंगे कि मेरे विचार से। वो एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा, हाँ एग्जामिन करने के लिए कहता तो फिर थोड़ा सा आप चाहें तो उस तरीके से शुरू कर सकते थे, एंड एनालिटिकल एग्जामिन करने के लिए भी नहीं कह रहा है, वो एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है कि आप इसकी व्याख्या कीजिए। जैसे होता है ना, आप अगर लिटरेचर के स्टूडेंट रहे या शुरू में तो आपके पास लिटरेचर होता ही है, उसमें क्या है, एक पोएट्री दे देते हैं और कहते हैं कि उसकी व्याख्या कीजिए, कविता की व्याख्या कीजिए, तो आप कविता का अर्थ समझाते हैं ना, बस वही है कि आप इसको समझाइए। अब आप देखिए कि इसमें जो सबसे खतरनाक पॉइंट है, शब्द है, वो कौन सा है, आजकल, nowadays। अभी आजकल को आप कैसे पकड़ेंगे, सीधी सी बात है, आजकल को आप तभी पकड़ सकेंगे जब आपने अखबारों में, ये जो हमारा कैट है ये किस तरीके से काम कर रहा है, उसके बारे में क्या सोचा जा रहा है, उसके बारे में किस तरीके की व्याख्याएं हो रही हैं, लोग उस पर आर्टिकल लिख रहे हैं, जब आपके आंखों के सामने से ये आर्टिकल गुजरे होंगे या आपने न्यूज पढ़ते समय अपने दिमाग में उसे रचाया बसाया होगा, तभी आप इसका उत्तर देने की स्थिति में अपने आप को पाएंगे। उदाहरण के तौर पर तो दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल प्रोवाइड किया था। मेरी समझ से ये बात होगी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 3rd week of September की बात होगी। वो होगा आप लोगों के पास। उसमें एक बहुत अच्छा लेख था और उसमें ये बताने की कोशिश की गई थी कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारी सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो अलग से एक केवल संविधान के मामले देखे और बाकी मामले ना देखे। अब मतलब उसमें उन्होंने बताया था कि ऐसा क्यों है कि संविधान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके मामले को सुप्रीम कोर्ट देखे। अब देखिए कि ये आर्टिकल आया और ये आर्टिकल चला गया और आपके ध्यान से भी उतर गया, लेकिन अगर आपने कॉन्शियस होकर के उसे पढ़ा है और मान लीजिए ये प्रश्न 2020 के मेंस में आ गया कि अब समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को दूसरे मामलों के अपीलीय मामले न सुनकर के सीधे सीधे संवैधानिक मामलों पर ही अपने को केंद्रित करना चाहिए, एक्सप्लेन, तो अब आप कहां से लेकर के आएंगे। नो डाउट कि आपने जो धारणा बना रखी है, थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ा है, उससे भी उसकी वीविंग हो जाएगी, लेकिन उतने अच्छे से नहीं हो पाएगी जितने अच्छे से होनी चाहिए। यानी कि आपको ये मैं कहूं कि 10 में से 6 नंबर मिल पाए, उतनी वीविंग नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आपने, चलिए इस आर्टिकल को नहीं भी पढ़ा है, लेकिन कॉन्शियसली आप न्यूज वगैरह सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बेसिक्स को आपने समझ लिया है, या यूं कह लीजिए कि जो समस्याएं हैं हमारी जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट पर जो प्रेशर है वर्कलोड का, अगर इन सबको देख समझ लिया है, जान लिया है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लिखाएंगे और आपको 4.5 नंबर मिल जाएंगे। और मुझे लगता है कि 4.5 नंबर भी अगर 10 में मिल जाते हैं जनरल स्टडीज और खासकर सेकेंड पेपर में, तो अपने आप में काफी है वो। तो दोस्तों, ये इसका सबसे बड़ा चैलेंज है। और ऐसे प्रश्नों की संख्या 20 में से 12-13 की है, 12-13 तो बहुत ज्यादा है। हाँ, 3-4 कह लीजिए कि प्रश्न ऐसे हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, जिनमें कुछ खास आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपने पढ़ाई की हुई है, किताबों से आपने पढ़ा है, और उनके ज्यों के त्यों आप चाहे तो लिखाएं थोड़े से बदलाव के साथ। जैसे उदाहरण के तौर पर चलिए मैं एक इसका भी एक नमूना आपके सामने पेश कर देता हूं। महान्यायवादी भारत की सरकार का मुख्य विधि सलाहकार और वकील होता है, चर्चा कीजिए। अब देखिए वो कह रहे हैं कि डिस्कस, सीधे सीधे बताइए। द अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिस्कस। अगर आप लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ेंगे तो उसमें बाकायदे इसी तरह से वो मेंशन किया, क्योंकि ये वाक्य ही लगभग इसी रूप में मेंशन है। तो अब आप देखिए कि आपको सीधे सीधे बताना है कि वो किस तरीके से, दो चीजें हैं यहां पर, आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सीधे सीधे महान्यायवादी के कार्य और वो लिख दें, आपको थोड़ा लिखने का तरीका बदलना पड़ेगा। दो शब्द, एक तो एडवाइजर है गवर्नमेंट टू द इंडिया, प्रेसिडेंट कुछ भी पूछे उनको बुला करके पूछ सकते हैं, सरकार को एडवाइज करता है अलग अलग मामलों पर, तो वहां वो एडवाइजर हो गए, और साथ ही वो लॉयर भी है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में बाकायदे वो सरकार की बात रखते हैं, उनकी पैरवी करते हैं। तो इन दोनों को लेकर के थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे आप देखिए कि जब आप इसके आंसर को लिख रहे हैं तो आप एक बड़ा खूबसूरत उदाहरण दे सकते हैं। आपको मालूम है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किस तरीके से, हालांकि वो इंडियन हमारे अटॉर्नी जनरल नहीं थे तो इसको हम वहां तो नहीं ले सकते, लेकिन इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं कि हमारे अटॉर्नी जनरल का नाम उसमें बड़ा फेमस हो जाता है मान लीजिए, तो आप उस काम का उल्लेख भी यहां कर सकते हैं। हालांकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो जो प्राइवेट जो वकील थे वो अपनी बात रख रहे थे। तो इस तरीके से जो नई घटनाएं हैं अगर उनको शामिल करके आप अपनी बात, यहां तक कि ऐसे प्रश्नों में भी जिन्हें आप बहुत स्टैटिक किस्म का क्वेश्चन कहते हैं, आप अपने प्रश्नों को जानदार बना सकते हैं। तो मित्रों, ऐसे प्रश्नों की संख्या ज्यादा नहीं है, थोड़े से प्रश्न ऐसे भी हैं जो बीच बीच के हैं, यानी कि बहुत ही सरल तरीके से पूछे गए हैं, लेकिन उसके बारे में आपको कहीं कुछ पढ़ने को नहीं मिलेगा, कहीं कुछ जानने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, आपको लिखना होगा कि क्या आप उसके बारे में सोचते हैं, कौन कौन से तथ्य आप दे सकते हैं, और जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट कैसे प्रूफ हो सकता है। तो मित्रों, थोड़ी सी समीक्षा मैंने जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर की करने की कोशिश की है। हालांकि प्रश्न 20 हैं और एक एक प्रश्न को लेकर के इन पर बातें की जा सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी आवश्यकता है। हाँ, जब डेली ऑडियो लेक्चर में जब इनसे जुड़ी हुई कुछ घटनाएं आएंगी तो डेफिनेटली आपको मालूम है कि मैं जो लेटेस्ट ईयर के जो पेपर होते हैं उनसे क्वेश्चंस ले लेकर के आपको समझाने और बताने की कोशिश करता ही हूं, तो वैसी कोशिश तो लगातार जारी रहेगी। और अब मुझे लगता है कि जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर के विश्लेषण को इसी के साथ ही समाप्त कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब आप सबसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।